जयो कुंज बिहारी
जय राधा माधवा जय कुंज
जय
जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना किरावन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना किरावन चारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु मेन गौरांगा। सब लोग मेरे पीछे बोले जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो अभी हम चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे, जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान चैतन्य ने नृत्य किया था। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला का ये अध्याय 13 है। जगन्नाथ के रथ के समक्ष नृत्य करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। उनके नृत्य को देखकर न केवल सारा ब्रह्मांड चकित था, अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्यधिक चकित हो गए। सुनना ध्यान से सब लोग, सुनिए ध्यान से। सज्जियात कृष्ण चैतन्यां श्रीरथांग्रेन नर्तयां येनासीन जगतां चित्रं जगन्नाथोपि विस्मितः। श्री कृष्ण चैतन्य और प्रभु नित्यानंद की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, चैतन्य के सारे भक्तों की जय हो। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं की जय हो, आप लोगों के लिए चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं की जय हो। अब कृपा करके रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का विवरण सुने। उनका नृत्य अत्यंत मनोहारी है, कृपा करके से ध्यान पूर्वक सुने। जय श्रोता गण सुन करी एक मन, रथ यात्रा नृत्य प्रभु और पारा में मोहन। तो चैतन्य महाप्रभु ने आज सवेरे के समय स्नान किया और अपने संगी, उनके निजी संगी अंधेरे में ही जाग गए और ध्यान पूर्वक स्नान किया। तब चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत पांडु विजय उत्सव देखने आए। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर चढ़ते हैं। राजा प्रताप रुद्र और उनके संगियों ने श्री चैतन्य के समस्त संगियों को पांडु विजय उत्सव देखने की अनुमति प्रदान की। पांडु विजय उत्सव क्या है समझिए, क्या अभी आप लोग सुन रहे हैं? नहीं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। तो मैं बीच में पूछता हूँ, क्योंकि ये विधि थोड़ी है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आप लोग जो है केवल देख रहे हैं, क्या कोई देखने की, केवल देखना नहीं है, है? आप सुनिए। पांडु विजय उस उत्सव को कहते हैं कि जगन्नाथ जी अपने सिंहासन से रथ में बैठते हैं। अपने मंदिर में सिंहासन में है जगन्नाथ जी, तो वहाँ से उनको ला करके उठा करके रथ में बैठाया जाता है, इसे पांडु विजय कहा जाता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। श्री चैतन्य महाप्रभु अथो तथा अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु इत्यादि अन्य प्रमुख भक्त ये देखकर परम सुखी थे कि जगन्नाथ किस तरह रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये जो है बड़ी सुनने की बात है, ये और बड़े आश्चर्य की बात है कि रथ यात्रा शुरू हो रही है। बलिष्ठ दैता शक्तिशाली थे, वे भगवान जगन्नाथ को हाथों हाथ सिंहासन से रथ तक ले गए। भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह को ले जाते समय कुछ दैताओं ने उनके कंधे पकड़े, कुछ ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। अर्चा विग्रह जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह की कमर पर मजबूत मोटी रेशम की रस्सी बांधी गई। दैताओं ने दोनों ओर से इस रस्सी को पकड़ लिया और अर्चा विग्रह को ऊपर उठा लिया। सिंहासन से लेकर रथ तक धुनी रुई के मजबूत गद्दे बिछा दिए गए। धुनी हुई रुई, समझ रहे हैं, धुनी हुई रुई जो है कैसी होती है, खूब उठी होती है ना, है ना। जगन्नाथ जी का भारी अर्चा विग्रह दैताओं द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जाया गया। जगन्नाथ जी का अर्चा विग्रह इतना भारी है कि वो जब उठा के ले जाते हैं तो एक गद्दे से दूसरे गद्दे में रखते हैं, लगातार नहीं ले जा सकते, बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते, तो एक गद्दे से दूसरे गद्दे में रख करके ले जाते हैं, है ना। जब दैता गण, उनको दैता बोलते हैं, जो बड़े बलिष्ठ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, जगन्नाथ जी को उठाते हैं। बलिष्ठ दैता गण जगन्नाथ जी के भारी अर्चा विग्रह को एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जा रहे थे, तब कुछ गद्दे टूट गए, उनकी रुई हवा में उड़ने लगी। इन गद्दों के टूटने से पटाखे जैसा प्रचंड शब्द हुआ। जगन्नाथ जी बहुत भारी हैं तो गद्दे में रखा तो फट गया, गद्दा फटा तो आवाज भी हुई बहुत जोर से, फटाक, और रुई भी जो उड़ी आकाश में, तो ये भी एक उत्सव का दृश्य बन गया। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है, भला उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जा सकता है, किंतु भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अपनी लीलाएं करने के लिए चलते हैं। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाया जा रहा था, तब विविध बाजों से तुमुल ध्वनि हो रही थी और श्री चैतन्य मणिमा मणिमा का उच्चारण कर रहे थे। भगवान चैतन्य बहुत प्रेम से, कि बड़ी ये महत्वपूर्ण घटना है कि भगवान जो है अपने सिंहासन से कहाँ पर जा रहे हैं, रथ में जा रहे हैं, है ना। तो भगवान चैतन्य क्या बोल रहे हैं, मणिमा मणिमा, बहुत प्रेम से बोल रहे हैं जगन्नाथ जी के लिए। मणिमा का मतलब है एक आदर का शब्द है भगवान के लिए। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाया जा रहा था, तो राजा प्रताप रुद्र हाथ में सुनहरी मोठ वाले झाड़ू लिए भगवान की सेवा हेतु मार्ग की सफाई करने लगा। राजा, राजा क्या कर रहा है, झाड़ू से, सोचिए राजा है ना, सोने की मोठ वाले झाड़ू से रास्ता साफ कर रहा है जगन्नाथ जी के लिए। राजा ने मार्ग में चंदन से सुगंधित जल का छिड़काव किया कि भगवान चलेंगे रथ में, जिस रास्ते से रथ में बैठेंगे उस रास्ते में क्या कर रहे हैं राजा, चंदन का छिड़काव। यद्यपि राजा थे, किंतु भगवान जगन्नाथ जी के लिए तुच्छ सेवा में लगे। यद्यपि राजा बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी भगवान के लिए तुच्छ सेवा कर रहे थे, इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के सही पात्र, भगवान की कृपा का पात्र बनने के लिए जरूरी है कि छोटी छोटी सेवा भी की जाए। ये नहीं सोचते कि नहीं नहीं मैं तो बड़ा, मैं कुर्सी में बैठूंगा, ऐसा नहीं है ना। राजा को ऐसी तुच्छ सेवा में लगा देकर श्री चेतन अत्यंत प्रसन्न हुए। ये सेवा करने से राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। रथ की सजावट देकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। रथ सोने से बना हुआ लग रहा था, सुमेरु पर्वत जैसा ऊंचा। इस सजावट में चमकीले शीशे और सैकड़ों चमड़ थे। रथ के ऊपर स्वच्छ छत्र और एक सुंदर झंडा लगा था। रथ को से रेशमी वस्त्रों और विविध चित्रों से सजाया गया था। अनेक पीतल के घंटे, घड़ियाल और घुंघरू बज रहे थे। जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ पर चढ़े और उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदेव अन्य दो रथों पर आरूढ़ हुए। सबसे आगे जो रथ होता है वो किसका होता है, बलदेव जी का, और उसके पीछे सुभद्रा जी का, और सबसे पीछे जगन्नाथ जी। हाँ, तो भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक महालक्ष्मी के साथ एकांत स्थान में रहे और उनके साथ क्रीड़ा विहार किया। तो जगन्नाथ जी का जो है दर्शन नहीं होता 15 दिन तक, लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, रथ यात्रा के दिन दर्शन होता है। महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आए। सारे मार्ग में बिछी महीन सफेद बालू यमुना तट के समान लग रही थी और दोनों ओर के छोटे छोटे बगीचे वृंदावन के बगीचों जैसे लग रहे थे। जब भगवान जगन्नाथ रथ पर चढ़ गए तो उन्होंने दोनों ओर के सौंदर्य को निहारा तो उनका मन आनंद से भर गया। जगन्नाथ जी देख रहे हैं, उनकी आंखें भी है ना बड़ी बड़ी देखने के लिए हैं, तो दोनों तरफ देख रहे हैं जगन्नाथ जी। रथ को खींचने वाले गौड़ कहलाते हैं, जगन्नाथ जी को उठाने वाले दैता कहलाते हैं, और रथ को खींचने वाले क्या कहलाते हैं? गौड़। वे रथ को अतीव आनंद से खींच रहे थे, किंतु रथ कभी बहुत तेज चलता और कभी बहुत मंद हो जाता है। क्यों? कभी रथ स्थिर हो जाता, टस से मस नहीं होता, चाहे कितने जोर से क्यों ना खींचा जाए, क्योंकि यह रथ भगवान की इच्छा से चलता है, अन्य किसी व्यक्ति की शक्ति से नहीं। खींचने वाले खींचें चाहे जितना खींचें, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ जो है उनकी इच्छा से कभी तेज चलेगा, कभी धीरे चलेगा, कभी रुक जाएगा, तो उनकी इच्छा से है। स्थिर है या रहे टानी ले न चले, ईश्वर इच्छा चले न चले कारो बले। जब रथ स्थिर हो गया तो महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को एकत्र किया और उन्हें अपने हाथों से फूलों की माला और चंदन से सजाया। भगवान स्वयं अपने हाथ से अपने भक्तों को क्या कर रहे हैं? अपने हाथों से फूलों की माला पहनाते हैं और चंदन लेप करते हैं। तबे महाप्रभु सबे लैया भक्त गण स्वहस्ते परायल सबे माले चंदन। श्री चंदन ने अपने हाथों से परमानंदपुरी और ब्रह्मानंद भारती को मालाएं और चंदन प्रदान किया, इससे उनका दिव्य आनंद बढ़ गया। इसी तरह जब अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य के दिव्य हाथों का स्पर्श हुआ तो वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। भगवान अपने हाथ से स्वयं माला चंदन देते। महाप्रभु ने संकीर्तन करने वालों को भी मालाएं और चंदन दिए। दो मुख्य कीर्तनीय थे, स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर। कीर्तन करने वालों की कुल चार टोलियां थीं, जिनमें कुल 24 कीर्तनीय थे। प्रत्येक टोली में दो दो मृदंग बजाने वाले थे, जिससे 8 अतिरिक्त व्यक्ति हो गए। जब 4 टोलियां बन गई तो चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनियों को बांट दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर और वक्रेश्वर पंडित को आज्ञा दी कि वे चारों टोलियों में प्रत्येक में जाकर नृत्य करें। प्रत्येक टोली में एक एक नृत्य करने वाला है ना, तो एक टोली में नित्यानंद प्रभु नृत्य करेंगे, दूसरी में अद्वैताचार्य, तीसरे में हरिदास ठाकुर और चौथी टोली में वक्रेश्वर पंडित। स्वरूप दामोदर को पहली टोली का अगुवा चुना गया। उन्हें 5 सहायक दिए गए जो उनके कीर्तन को दोहराएंगे। हर टोली में एक नर्तक है, नृत्य करने वाला है, और प्रत्येक टोली में एक गाने वाला है जो अकेला गाता है और फिर उसके बाद में सब दोहराते हैं। जो 5 जन स्वरूप दामोदर के गाने को दोहराते थे वे थे दामोदर पंडित, नारायण, गोविंदत्त, राघव पंडित और गोविंदानंद। अद्वैताचार्य प्रभु को पहली टोली में नृत्य करने के लिए आदेश मिला। तब महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिसके प्रधान व्यक्ति हुए श्रीवास ठाकुर। तो ये सब नाम बताए गए हैं, इनको मैं आगे इनको छोड़ करके और आगे बढ़ रहा हूँ। 7 दल कुल मिलाकर के 7 दल हैं कीर्तन के, है ना। अब चैतन्य महाप्रभु जो है जब संकीर्तन की ध्वनि उत्पन्न हुई तो तीनों लोग भर गए। तब किसी को संकीर्तन के अतिरिक्त किसी बाजे की ध्वनि या अन्य ध्वनि नहीं सुनाई दे रही थी। संकीर्तन की ध्वनि इतनी तेज होना चाहिए कि बाजे की ध्वनि उसको ढके नहीं। ऐसे नहीं कि बाजा इतना तेज करे कि कीर्तन की ध्वनि ना सुनाई पड़े, है ना। उस समय माइक नहीं था, आप समझ रहे हैं, उस समय माइक नहीं था, लेकिन तो भी इतनी तेज आवाज होती थी कीर्तन की। बाजे की ध्वनि जो है सहायक होती है कीर्तन में, लेकिन ये नहीं कि वो बाधक बन जाए। संगीत जो है कीर्तन में बाधक नहीं होना चाहिए बल्कि सहायक होना चाहिए। श्री चैतन्य हरि हरि उच्चारण करते हुए 7 दलों में विचरण कर रहे थे। वे अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से बोले, जय जगन्नाथ। साध ठाए बोले प्रभु हरि हरि बली जय जगन्नाथ बले हस्ते जोगे तुली। तब श्री चैतन्य ने एक ही साथ सभी सातों टोलियों में लीलाएं करके अपनी योग शक्ति का परिचय दिया। अब सुनो आश्चर्य क्या है, भगवान चैतन्य जो है सातों में एक साथ प्रकट हो गए। क्या समझे, सातों टोलियों में एक साथ प्रकट हो गए, सात रूप धारण कर लिए उन्होंने। और हर एक सोच रहा है कि श्री चैतन्य मेरी टोली में है और अन्यत्र कहीं नहीं जाते हैं, वे हम सब पर कृपा की वर्षा कर रहे हैं। हर टोली में भक्त सोच रहा है, सबे कहे प्रभु आचन मोरे संप्रदाय अन्न ठाए नाही जान हमारी दयाए। वास्तव में कोई भी महाप्रभु की अचंद शक्ति को नहीं देख सका, केवल बहुत अंतरंग भक्त ही समझ पाए। क्या समझ पाए कि भगवान एक साथ सातों में है। भगवान जगन्नाथ संकीर्तन से बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कीर्तन देखने के लिए अपने रथ को खड़ा कर दिया। जगन्नाथ जी कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से रथ खड़ा कर दें तो चाहे जितना खींचो नहीं आगे रथ नहीं चलेगा, है ना। तो रथ खड़ा कर दिया, क्यों जगन्नाथ जी रथ खड़ा कर दिया, संकीर्तन को देखना चाहते हैं। तो उनकी अपनी इच्छा होती है, उनको अच्छा लग रहा है, कीर्तन अच्छा लग रहा है, तो रथ को आगे नहीं बढ़ने दिया जगन्नाथ जी ने। सुना कैसा आश्चर्य है, ये है आश्चर्य, आश्चर्य है कि नहीं, जगन्नाथ जी हमारा रथ खड़ा कर दिया। अब वैसे तो लगते हैं कि जगन्नाथ जी क्या है, लकड़ी की एक मूर्ति है, वो क्या देखेंगे, वो क्या कंट्रोल करेंगे, उनका पूरा कंट्रोल है, वो देख रहे हैं जगन्नाथ जी, है ना। अपना रथ खड़ा कर दिया, कीर्तन देखी या जगन्नाथ हर सित संकीर्तन देखे रथ करी अस्था गीत। राजा प्रताप रुद्र भी संकीर्तन देखकर विस्मित हो गए और भी निष्क्रिय हो गए, कृष्ण के भाव प्रेम में डूब गए। जब राजा ने काशी मिश्र से महाप्रभु की महिमा के विषय में बतलाया तो काशी मिश्र ने कहा, हे राजन आपके भाग्य की सीमा नहीं। राजा देख पाया, क्या देख पाया, कि भगवान सातों टोलियों में एक साथ सात रूप धारण कर लिए हैं। राजा और सारंग भट्टाचार्य दोनों ही महाप्रभु की लीला जानते थे, किंतु चैतन्य की युक्तियों को अन्य कोई नहीं देख सकता था, उन्हें केवल वही समझ सकता है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी हो। महाप्रभु की कृपा के बिना ब्रह्मा तक नहीं समझ सकते, ब्रह्मा जी तक नहीं समझ सकते। श्री चैतन्य राजा को मार्ग की सफाई जैसा तुच्छ कार्य करते देखकर बहुत प्रसन्न थे, इसी कारण से उस राजा को चैतन्य की कृपा प्राप्त हुई और वो देख पाया रहस्य, भगवान का रहस्य देख पाया। कैसे देख पाया राजा, उसने क्या किया था, हाँ मार्ग की सफाई की थी, इसी चैतन्य का रहस्य देख पाया। क्या रहस्य था, सातों टोलियों में एक साथ भगवान। राजा है, राजा तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट मन से प्रसादे पाए रहस्य दर्शन। यद्यपि राजा को मिलने से मना कर दिया गया था, हाँ कि चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिले, क्योंकि भगवान जो है सन्यासी का चरित्र, चूंकि सन्यासी का चरित्र कर रहे हैं भगवान, तो सन्यासी का कर्तव्य सिखा रहे हैं कि विषयी लोगों के साथ में नहीं मिलना। तो राजा को मना किया कि भगवान से नहीं मिलना है, किंतु भगवान कृपा कर रहे हैं दूर से, राजा के ऊपर भगवान दूर से कृपा कर रहे हैं, है? श्री चैतन्य की शक्ति को कौन समझ सकता है। जब सारंग भट्टाचार्य और काशी मिश्र ने राजा के ऊपर महाप्रभु की कृपा देखी तो वे चकित रह गए कि भगवान जो है राजा से बात तो नहीं करते हैं लेकिन कृपा कैसे करते हैं, दिखा रहे हैं अपना, है ना। श्री चैतन्य ने कुछ समय तक अपनी लीलाएं इस प्रकार की, वे स्वयं गाते थे और अपने संगियों को नाचने के लिए कहा। हे मत लीला प्रभु कैला कत छन आपने गाए ने नाचने जय भक्त गण। महाप्रभु अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी एक रूप हो जाते और कभी अनेक रूपों में हो जाते, उनके अंतरंगा शक्ति ऐसी है। महाप्रभु अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा अपने आप को भूल गए, किंतु उनके अंतरंग शक्ति ने उनके मन में भाव को प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु ने परम प्रसन्न होकर नृत्य किया। जिनके पास मोबाइल है बंद कर दीजिए, मोबाइल मैंने बंद कर दिया। हाँ क्या सुना, क्या सुना?
अपने मोबाइल बंद कर दीजिए।
नहीं नहीं ये तो मैंने सूचना दी है। कथा क्या है, कथा क्या चल रही है? किसने सुना कथा? हाँ किसने सुना क्या?
एक साथ सात उपनयन में नृत्य कर रहे थे कभी अनेक।
इस तरह भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर आरूढ़ हुए और श्री चैतन्य ने अपने सारे भक्तों को रथ के सामने नाचने के लिए प्रोत्साहित किया। अब कृपा करके वो वृतांत सुनिए जिस समय भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर जा रहे थे और महाप्रभु रथ के सामने नृत्य कर रहे थे। आगे सुन जगन्नाथ गुंडीचा गमन तारे आगे प्रभु जैसे करीला नर्तन। महाप्रभु ने कुछ समय तक कीर्तन किया और सारे भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया। अब महाप्रभु का मन हुआ नृत्य करने के लिए। अभी तक तो महाप्रभु नचा रहे थे सब भक्तों को, अब उनकी इच्छा हुई नृत्य करने की। तो सातों टोलियां एक इकट्ठी हो गई, सब मिल गई सातों टोलियां। आपानी नाची थे जब प्रभुर मन हाइला सात संप्रदाय तब एकत्र करीला। अब श्री चैतन्य का ऊंचे कूदते हुए नृत्य करने का मन हुआ तो उन्होंने सबको स्वरूप दामोदर के अधीन कर दिया। हा? महाप्रभु ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपना मुख जगन्नाथ की ओर उठाया और प्रार्थना की। अब देखिए नृत्य करने वाले हैं भगवान चैतन्य, तो क्या कर रहे हैं? पहले जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे हैं। हम नृत्य करते हैं तो ये दिखाने के लिए नहीं नृत्य करते कि लोग देखें मैं कैसा नृत्य कर रहा हूँ, नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए उस जो है भाव को लाने के लिए कि मैं जगन्नाथ जी को जो है अपने नृत्य से प्रसन्न करूंगा, तो जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़ करके उन्होंने अपना मुख जगन्नाथ जी की ओर उठाया और प्रार्थना की कि मैं श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो समस्त ब्राह्मणों के आराध्य हैं, गौओं ब्राह्मणों के हितैषी हैं, सारे जगत को लाभ पहुँचाते हैं। मैं कृष्ण गोविंद नाम से विख्यात भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो देव की पुत्र कहलाते हैं, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो वृष्ण वंश के दीपक हैं, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जिनके शरीर की कांति नए बादल की तरह है, जिनका शरीर कमल के समान कोमल है, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो संसार का असुरों के भार से उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और जो हर एक को मुक्ति देते हैं। जियति जियति देवो देवकी नंदनो सौ जियति जियति कृष्णो वृष्ण वंश प्रदीप जियति जियति मेघ श्यामला कोमलांगो जियति जियति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद। ये प्रार्थना श्री चैतन्य जगन्नाथ जी के सामने कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन निवास हैं अर्थात समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, ये देवकी नंदन यशोदा नंदन कहलाते हैं, ये दुवंश के मार्गदर्शक हैं, अपनी भुजाओं से अपवित्र मनुष्यों का वध करते हैं, अपनी उपस्थिति से समस्त वस्तुओं का विनाश करते हैं, जो चरचर जीवों के लिए हैं, जो अशुभ होते हैं, जिनका हंसमुख आनंददायक मुख है, वृंदावन की गोपियों की इच्छा को बढ़ाने वाला है, वे विजयी हों और सुखी हो। जियत जन निवासो देव की जन्म वादो यदुवर पर संस्वार दोर्भिरश्यन धर्मम स्थिर चर ब्रज नग्ना सुस्मित श्री मुखे न ब्रजपुर वनिता नाम वरदयन काम देवम। मैं ना तो ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र हूँ, न ही मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। मैं तो गोपियों के भर्ता श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास का भी दास हूँ। वे अमृत के समुद्र के तुल्य हैं और विश्व के दिव्य आनंद के कारण हैं। वे सदैव तेजो में रहते हैं। ना हम विप्रो न च नरपतिर ना वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वाम किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्ण अमृताब्धेर गोपी भरतो पद कमलयोर दास दासानुदासः। इतनी प्रार्थना श्री चैतन्य ने जगन्नाथ जी के सामने की है, क्योंकि अभी वो नृत्य आरंभ करने वाले हैं। इन श्लोकों को सुनाने के बाद महाप्रभु ने पुनः नमस्कार किया और सारे भक्तों ने हाथ जोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वंदना की। एते पाड़ी पुनरापि कारी ले प्रणाम जोड़ हाथे भक्त गण बंदे भगवान। अब चैतन्य ने बादलों जैसी गर्जना करते हुए चक्र की तरह चक्कर लगाते हुए ऊंचा उछल उछल कर नृत्य शुरू किया। घूमते हुए अग्निपुंज की तरह लग रहे थे। अब सुने ध्यान से है क्या हो रहा है। उद्दंड नृत्य प्रभु कार्य अहंकार चक्र भ्रमे भ्रमे जैसे आलाते आकार। क्या समझे, भगवान जो है अपने दोनों हाथों को फैला करके चक्र की तरह घूम रहे हैं, चक्र की तरह घूम रहे हैं, हैं और ऊपर जा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता है ना। और वो जब ऐसे घूम रहे इतनी तेजी से जैसे पंखा घूमता है ना, तो फिर इसकी पंखुड़ियां नहीं दिखाई पड़ती हैं, पूरा एक चक्र जैसे बन जाता है। तो ऐसे भगवान चैतन्य का जो है पूरा शरीर अग्नि का पुंज जैसा लग रहा है पूरा, समझ रहे हैं। और वो ऊपर उठ रहा है, अब उनका जो आकार है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है अग्नि का पुंज जैसा, क्योंकि उनका शरीर ऐसा है ही है सोने की तरह है। और भगवान जब घूम रहे हैं, अब सोचिए कैसा मतलब ये नृत्य है, ये ना कभी देख सकते हैं ना कोई मतलब दिखा सकता है ऐसा नृत्य। कैसा नृत्य है, चक्र की तरह घूम रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं, इस तरह से उनका जो है नृत्य हो रहा है। नृत्य करते समय महाप्रभु जहां कहीं भी चरण रखते थे पूरी धरती पर्वतों समुद्रों समेत हिलती थी। जमीन हिल रही है, पर्वतों समेत जमीन हिल रही है। जब इतनी ऊंचाई से गिरते हैं भगवान नीचे, उनके पैरों की ठोकर से जमीन हिलती है। नृत्य प्रभु जहाँ जहाँ पड़े पादे तल ससागर सैल मही करे टल मल। सब जब चेतन नाच रहे थे तो उनके शरीर में आनंद के विकार उत्पन्न हुए। ऐसा लगता था मानो कभी जल हो जाते हैं, कभी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी पसीना आता है, कभी रोते हैं, कभी कांपते हैं, शरीर का रंग बदल जाता है और कभी शरीर में विवशता गर्व हर्ष दैन्य के लक्षण प्रकट होते हैं। स्तंभ स्वेदे पुलक अश्रु कंप वर्ण नाना भावे व्यवस्थित गर्व हर्ष ध्यान। जब श्री चैतन्य नाचते हुए पछाड़ खाकर गिरते तो भूमि पर लौटने लगते। अब देखो कैसे गिरे और अब रोलिंग कर रहे हैं है ना, लौट रहे हैं जमीन में लौट रहे हैं। तो ऐसा लगता है मानो सोने का पर्वत भूमि पर लौट रहा हो। आछाड़े खाइया पड़े भूमे गाड़े जाए सुवर्ण पर्वत जैसे भूमे ते लोटाए। ये देखकर नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथ फैलाकर इधर उधर दौड़ रहे महाप्रभु को पकड़ने का प्रयास करते हैं। नित्यानंद प्रभु की क्या चिंता है कि महाप्रभु गिरेंगे तो वो पकड़ लें नहीं तो चोट लगेगी। तो नित्यानंद प्रभु जो है अपने दोनों हाथों को फैला करके मतलब जहां अब भगवान चैतन्य ऊपर उठ करके मतलब नीचे गिरते हैं तो वो तुरंत जो है मतलब दोनों हाथों को फैला करके वहां आते हैं कि गिरने ना पाए, नीचे ना गिरने पाए। कौन? नित्यानंद प्रभु। अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पीछे पीछे चलते हुए बारंबार जोर से हरि बोल का उच्चारण करते हैं। प्रभु पाचे बोले आचार्य कारी अहंकार हरि बोल बोले बार बार। भीड़ को महाप्रभु के पास न आने से रोकने के लिए भक्तों ने तीन घेरे बनाए। पहले घेरे नित्यानंद प्रभु का था जो बलराम जी हैं महान शक्तिशाली हैं, भीड़ जो है वहां ना आए। इसके लिए क्या किया घेरा एक दूसरे का हाथ पकड़ करके घेरा बनाया भक्तों ने। और उसमें सबसे पहला घेरा किनका था नित्यानंद प्रभु का था, बहुत बलवान है उन्होंने घेरा बनाया ना। फिर दूसरा घेरा काशीश्वर गोविंद जैसे भक्तों ने बनाया, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर और बड़ा घेरा बनाया। क्यों बनाया क्यों कि भीड़ ना आए वहां पर है ना, भीड़ ना आए, दूसरा घेरा बनाया। फिर तीसरा घेरा महाराज प्रताप रुद्र ने अपने सहायकों के साथ बनाया है जैसे भीड़ निकट ना आए। श्री चैतन्य के नृत्य को देखकर हर व्यक्ति चकित था, यहां तक भगवान जगन्नाथ भी है इस नृत्य को देखकर के बहुत प्रसन्न हुए। जगन्नाथ जी प्रसन्न हो रहे हैं है? प्रभु नृत्य देखी लोगे हैला चमत्कार है, अन्न आचोक जगन्नाथ फिर आनंद अपार है। और रथ पूरी तरह से स्थिर हो गया। अब जब चैतन्य ऐसा नृत्य करें तो भगवान जगन्नाथ अपने रथ को क्यों आगे बढ़ाएंगे है? वो अपना जो है जैसे स्टेज में बैठे हुए देख रहे हैं ऐसे नृत्य को देखने के लिए जगन्नाथ जी ने रथ को रोक लिया। रथ आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे जितना खींचे रथ आगे नहीं बढ़ेगा, जगन्नाथ जी रथ रोक लिया। और जगन्नाथ अपलक नेत्रों से श्री चैतन्य का नृत्य देख रहे हैं। अपलक नेत्र, बड़ी बड़ी आंखें हैं जगन्नाथ जी की, देख रहे हैं। तब तक रथ स्थिर खड़ा रहा। रथ स्थिर कैला आगे ना करे गमन, अनिमिष नेत्र कार्य नृत्य दर्शन। देवी सुभद्रा और बलदेव दोनों को अपने हृदय में परम सुख का अनुभव हुआ, वे भी नृत्य देख करके मुस्कुरा रहे थे। अलग अलग रथों में हैं सुभद्रा देवी और बलदेव जी, तो वो भी नृत्य को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। सुभद्रा बल राम हृदय उल्लास है, नृत्य देखे दुई जान श्री मुखे ते हास है। जब श्री चैतन्य नाच रहे थे और ऊंचे उछल रहे थे तब उनके शरीर में आठ प्रकार के सात्विक भाव प्रकट हुए, एक साथ हुए, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए मानो फोड़े फूट निकले हों। ऐसा रोमांच कभी सुना या कभी देखा? कैसा रोमांच, शरीर में फोड़े जैसे फूट गए। रोमांच तो हमारे भी आपको भी होता है, कभी जाड़े में भी रोंगटे खड़े होते हैं है? तो कैसे रोंगटे खड़े होते हैं? ऐसे नहीं होते हैं कि शरीर में जैसे बड़े बड़े फोड़े निकल आए है ना। और शरीर कांटों से, कांटों वाला सेमल वृक्ष के समान हो गया, सेमल का वृक्ष कांटे होते हैं, कांटे कांटे, ऐसा रोमांच है। इसको समझिए कि कैसा रोमांच है भगवान चैतन्य के शरीर में, कृष्ण प्रेम का रोमांच ऐसा है। तो ऐसा प्रेम इस जगत के इतिहास में कभी प्रकट नहीं हुआ है ना। इसको समझिए कि रोमांच कैसा है, सेमल के वृक्ष में जैसे कांटे होते हैं ऐसे शरीर में जो है रोमांच है चैतन्य के। मानस प्राण सम है रोम है वृंद पोल के तय, से मूली रे वृक्ष जैन कंटक है बिष्टे तय। और दांत कटकटा रहे हैं, दांत कटकटा रहे हैं तो लोग डर गए, ऐसा लगा कि दांत गिर जाएंगे, ऐसे दांत कटकटा रहे हैं उनके। क्यों कटकटा रहे हैं? प्रेम के, कृष्ण के प्रेम में। एक एक दंत कंप देखी थे लागे भय, लोग के जाने दंत सब खासी या पड़ाए। अब पूरे शरीर में पसीना बह रहा है, और पसीना तो हमारे और आपके भी निकलता है, लेकिन कैसा पसीना निकल रहा है कि साथ में खून भी निकल रहा है। क्या समझे ऐसा पसीना कभी हुआ किसी को? कभी नहीं। ऐसा पसीना उसके साथ में खून भी निकल रहा है। और भावावेश में जगन्नाथ नहीं बोल पाते हैं, जा गागा ऐसा बोल पाते हैं। क्या बोलते हैं? जा गागा। हाँ, एक नया नाम मिल गया जगन्नाथ को प्रेमी है, प्रेमी जो है भगवान को नया नाम भी देते हैं, क्योंकि नाम बोल नहीं पाते जगन्नाथ। हाँ, प्रेम में जो है नाम जगन्नाथ नहीं बोल पा रहे हैं, क्या बोल पा रहे हैं? जय जय गागा है। सर्वांगे प्रसवेद छोटे ताते रक्तोक्तम जय जय गागा जय जय गागा गंगन बचन। और आंसू ये सब जो है समझ लीजिए और कभी भूलना नहीं, कैसा प्रेम है भगवान चैतन्य का। अब आंसू कैसे हैं इसको भी ध्यान से सुनिए। आंसू कैसे हैं? तेजी से आंसू निकल रहे हैं, मानो पिचकारी से जल निकल रहा हो। ऐसे आंसू निकलते कभी किसी के? ऐसे निकलते हैं? ऐसे नहीं निकलते कभी। कैसे निकलते हैं आंसू चैतन्य के? ऐसे निकलते हैं, पिचकारी पिचकारी मारते ना तो उतनी दूर तक जाती फुहार। ऐसे आंसू निकल रहे हैं श्री चैतन्य के, मानो पिचकारी से जल निकल रहा हो, जैसे सारों चारों ओर लोग खड़े हुए भीग गए हैं। अब पार्क में भी आजकल फुहारा होता है ना, जो घूमता है तो बहुत दूर तक जाता है पानी। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हैं, वो फुहारा जो है जो ऐसे पानी फेंकता है और घूमता भी साथ साथ, तो और दूर जाता है पानी, तो पूरे पार्क में सिंचन हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान भी घूम रहे हैं और आंसू ऐसे निकल रहे हैं, हैं, और घूमने से और दूर जाता है पानी। तो सबको भिगो दिया, सबको नहला दिया, सब लोग नहा गए। किससे नहा गए? आंसुओं से नहा गए। जल यंत्र धारा जय छे बहे अश्रु जल आस पास लोग जत भीजी ले सकल। कभी नहीं सुना न कभी देखा न कोई दिखा सकता है ऐसा। तो ये ऐसी लीलाएं हैं जिनका मंचन नहीं हो सकता, स्टेज में कोई नहीं मतलब कर सकता। सभी लोगों ने देखा कि उनके शरीर का रंग गोरे से गुलाबी हो गया है। अब वर्ण रंग बदला, कैसा? गोरे से क्या हो गए? गुलाबी हो गए। और देह की कांति मल्ले का फूल जैसी लग रही थी। कभी स्तंभित जान पड़ते, स्तंभित मतलब एक खंभा, खंभे की तरह अकड़ जाते हैं। प्रेम में क्या हो जाता है? अकड़ जाते हैं खंभे की तरह। कभी जमीन पर लौटने लगते हैं, कभी हाथ पांव लकड़ी जैसे कड़े हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं जैसे चल फिर नहीं सकते हैं। और जब जमीन पर गिरते हैं कभी कभी सांस रुक जाती है। भक्तों ने देखा तो उनके प्राण छीण हो गए कि अरे अब क्या होने वाला है, श्वास ही रुक गई चैतन्य देव की। कभी उनकी आंखों से पानी बहता तो कभी नासिकाओं से, आंखों से तो पानी बह रहा है और नासा क्षेत्रों से भी पानी बह रहा है ना? मानो चंद्रमा से अमृत की धाराएं बह रही हूं, चार धाराएं। उनका मुख क्या है? चंद्रमा जैसा सुंदर है, हैं? और चंद्रमा से, इस चंद्रमा से चार धाराएं बह रही हैं अमृत की। दो धाराएं इधर से और दो धाराएं इधर से। कबू नेत्र ना सह जल मुखे पाड़े फेन अमृते रह धारा चंद्र बिंबे बहे जिन। श्री चैतन्य के मुख से जो फेन गिरा उसे शुभानंद ने पी लिया, क्योंकि वह महाभाग्यशाली था, कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करने में चतुर था। पी लिया, क्या पी लिया? क्या पी लिया? नहीं, मुख से जो फेना गिरा ये छठवीं धारा है। छठवीं नहीं, पांचवीं। चार धाराएं तो ये हैं, दो दो आंखों से, दो नासिका से, और एक फेना, फेना मुंह से निकल रहा है। तो फेना को पी लिया शुभानंद ने। सही फेने लिया शुभानंद कैला पान कृष्ण प्रेम रह सकते हो महाभाग्यवान। इस प्रकार जो है नृत्य किया चैतन्य महाप्रभु ने। अब जो है जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे चलने लगा है, और श्री चैतन्य आगे बढ़कर रथ के सामने नाचने लगे। नाचते हुए गाते हुए भगवान जगन्नाथ के सामने जितने भक्त थे वे उन्हीं पर आंखें टिकाए थे। तब चैतन्य महाप्रभु कीर्तनियों के साथ जुलूस के पिछले सिरे तक गए। श्री चैतन्य अपने नेत्रों और मन को जगन्नाथ पर टिकाए हुए अपने दोनों हाथों से गीत का अभिनय करने लगे। गीत का अभिनय करते हुए महाप्रभु कभी कभी जुलूस में पीछे चले जाते। ऐसे अवसर में जगन्नाथ स्थिर हो जाते हैं। जगन्नाथ जी पीछे तो नहीं देख सकते ना, जगन्नाथ जी तो आगे हैं और चैतन्य जो है पीछे चले गए तो अपना रथ रोक देते हैं। जगन्नाथ जी अपना रथ रोक देते क्यों? क्योंकि हाँ पीछे कहाँ चले गए हैं? अब पीछे चले गए तो जगन्नाथ जी नहीं देख सकते पीछे, तो रथ रोक दिया कि जब आगे आएंगे तब तब रथ आगे बढ़ेगा। तो जगन्नाथ जी अपना रुके हुए हैं, हैं? तो अपना प्रेम दिखा रहे हैं। जगन्नाथ जी अपना प्रेम दिखा रहे हैं, हैं? कि तुम कहाँ चले गए, हैं? पीछे चले गए हो, हैं? तो मैं कैसे आगे जाऊं? तो जगन्नाथ जी अपना प्रेम दिखा रहे हैं। और जब चैतन्य देव आगे आते तो जगन्नाथ जी का रथ पुनः धीरे धीरे चलने लगता। जब आगे आ जाते तो वह रथ को जगन्नाथ जी चलाते हैं आगे, है ना? तो खींचने से रथ नहीं चलता है, जगन्नाथ जी इच्छा से रथ चलता है। गौरे जाते पाछे चले श्याम है स्थिरे, गौरे आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। गौर और श्याम, गौर है चैतन्य और श्याम है जगन्नाथ। इस तरह चैतन्य और जगन्नाथ में भोर लगी कि कौन आगे निकले। श्री चैतन्य इतने बलशाली हैं, जगन्नाथ जी को अपने रथ में प्रतीक्षा करनी पड़ती। अगर चैतन्य पीछे गए तो जगन्नाथ जी उनके बस में है। हेमत गौर श्याम दो है ठेला ठेली, स्वरथ श्याम रे राखे गौर महाबली। जब श्री चैतन्य नाच रहे थे तो उनका भाव बदल गया। वो राधा भाव में, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, राधा भाव में श्लोक पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये सब चीजें जो है बहुत ऊंचे धरातल की हैं। राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु कुछ बोल रहे हैं। अब जगन्नाथ जी की प्रदक्षिणा करके श्री चैतन्य रथ के पीछे चले गए और अपने सिर से रथ को ढकेलने लगे। सुन ले ध्यान से, क्या अब श्री चैतन्य कहाँ चले गए? रथ के पीछे चले गए और रथ को ढकेल रहे हैं। किससे? सिर से। हाथ नहीं लगा रहे हैं, हाथ नहीं लगा रहे हैं रथ में, सिर से ढकेल रहे हैं। क्यों ढकेल रहे हैं? कि जगन्नाथ जी तो आगे बढ़ नहीं रहे हैं और रस्सी खींचने वाले चाहे जितने खींचे जगन्नाथ जी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन पीछे से श्री चैतन्य क्या कर रहे हैं? अपने सिर से ढकेल रहे हैं। तो क्या हुआ? तबे महाप्रभु रथ प्रदक्षिणा करिया, रथ पाचे जाई ठेले रथ माथा दिया। कैसे ठेला रथ को? माथा लगाया इसमें, ऐसे धक्का दिया सिर से, है? हाथ नहीं लगाया। तो क्या हुआ? उनके ढकेलती रथ घर घर की आवाज करके चल पड़ा। हरि बोल, चारों ओर से हरि हरि का उच्चारण होने लगा। ठेली ते चले रथ हाड़े हाड़े करी, चतुर्दे के लोके सब बले हरि हरि। रथ कर रहा है हड़ 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 करके रथ चल रहा है और लोग हरि हरि करके चलने लगे कि रथ चलेगा नहीं। श्री चैतन्य पीछे हैं तो रथ आगे बढ़ेगा नहीं और लोग खींचे तो भी नहीं आगे बढ़ेगा, लेकिन वो पीछे से अपना सिर लगा करके धक्का दिया तो रथ आगे बढ़ा। जगन्नाथ जी की शक्ति कम है और श्री चैतन्य की शक्ति ज्यादा है। जगन्नाथ जी अपनी शक्ति से रथ को रोके हुए हैं, लेकिन चैतन्य की शक्ति से रथ आगे बढ़ा। जैसे रथ चल दिया, श्री चैतन्य अपने निजी संगियों को बलदेव और लक्ष्मी देवी सुभद्रा के रथों के समक्ष ले गए और बहुत अधिक नृत्य करने लगे। बलदेव जी और सुभद्रा के समक्ष नृत्य करने के बाद श्री चैतन्य जगन्नाथ जी के रथ के सामने आए और पुनः उन्हें देख करके नृत्य करने लगे। श्री चैतन्य जो है और आगे जाते हैं। जगन्नाथ जी के आगे वाला रथ कौन सा है, किसका है? सुभद्रा जी का है। उनके सामने नृत्य करते हैं, फिर उसके आगे किसका है? बलदेव जी का है तो उनके आगे नृत्य करते, फिर आए जगन्नाथ जी के आगे फिर नृत्य करने लगे। तहा नृत्यकारी जगन्नाथ आगे आईला, जगन्नाथ देखी नृत्यकारी तेला गीला। इसके बाद फिर बलगंडी नामक स्थान पर पहुंचे, जगन्नाथ जी ने अपना रथ रोक दिया। जगन्नाथ जी जो है अपना रथ को रोक दिया और श्री चैतन्य और उनके भक्त रथ के सामने नृत्य कर रहे थे और जगन्नाथ जी अपना रथ रोक करके नृत्य देखने लगे। इस समय जो है भगवान को भोजन समर्पित किया गया, जगन्नाथ जी को भोजन समर्पित किया गया। उस समय फिर सब यात्रियों को भी भोजन कराया गया, सबने जो है अब रथ छोड़ दिया, जगन्नाथ जी का रथ अब भोग लग रहा है वहां पर। श्री चैतन्य नृत्य के कठोर श्रम से बहुत थक गए थे, उनके सारे शरीर पर पसीना था, अतः उन्होंने बगीचे की सुगंधित शीतल वायु का आनंद उठाया। थकान में जो है अच्छी हवा लगती है ना, हवा से बड़ा अच्छा लगता है। नृत्य परिश्रम में प्रभुर देह घन घर में सुगंधित शीतल वायु कारे न सेवन। संकीर्तन करने वाले सारे भक्त भी वहां आ गए, उन्होंने वृक्षों के नीचे विश्राम किया। जत भक्त कीर्तन आसिया आरामे प्रतिवृक्ष तले सबे करे न विश्रामे। इस तरह मैंने श्री चैतन्य द्वारा किए गए महासंकीर्तन का वर्णन किया है, जिस तरह वे जगन्नाथ के समक्ष नाचे थे। एता कहे ले प्रभुर महासंकीर्तन जगन्नाथ रागे जैसे कारी ले नर्तन। श्री रूप गोस्वामी ने चैतन्याष्टक नामक अपनी स्तुति में महाप्रभु के नृत्य का स्पष्ट वर्णन किया है। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य अष्टक नामक एक स्तुति लिखी है। अष्टक का मतलब आठ श्लोक, कोई एक ऐसी प्रार्थना जिसमें आठ श्लोक होते हैं उसको अष्टक बोलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है, चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रार्थना है तो चैतन्य अष्टक कहलाता है। और ये किसने लिखा है? रूप गोस्वामी ने लिखा है। उसमें एक श्लोक में चैतन्य के नृत्य का वर्णन उन्होंने लिखा है। उसका जो है अर्थ यह है, श्री चैतन्य ने रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ के सामने मार्ग में परम प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किया। नृत्य करने के दिव्य आनंद से अभिभूत होकर नामोच्चार करने वाले वैष्णवों से घिरे महाप्रभु ने भगवत प्रेम की लहरें प्रकट की। ऐसे श्री चैतन्य कब मेरे सामने पुनः दर्शन देंगे? रथारूढ़ राधधि पदवी नीला चलपतेर अदभ्र प्रेमोर्मी स्फुरित नटनोल्लास विवसह सहर्षम गायन भी परिवृत तनुर्वैष्णव जन सचेतन्य किम मे पुनरपि त्रिशोर्याशती पदम। जो भी रथ यात्रा के इस विवरण को सुनता है, सुन रहे आप लोग? सुनिए, हाँ हरि बोल, सुनिए ध्यान से। जो भी रथ यात्रा के इस विवरण को सुनता है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे, उसे भी वो उच्च अवस्था प्राप्त होगी जिससे उसे भगवत भक्ति और भगवत प्रेम में दृढ़ विश्वास प्राप्त होगा। हरि बोल। यह जय सोने सही श्री चैतन्य पाए सुदृढ़ विश्वास सा प्रेम भक्ति है। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। श्री रूप रघुनाथ पादे जा रहे आस चैतन्य चरितामृत का है कृष्ण दास। तो ये अध्याय 13 की कुछ लीलाएं मैंने सुनाई आप लोगों के सामने, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का वर्णन है ना। अब कितना समय है और कितने समय में समाप्त करना है क्या? अभी समय 7 बजने में कुछ समय बाकी है, अभी और कितनी देर हमें करना है? हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर कर सकते हैं? आधा घंटा और बोलो कितना 15 मिनट और 15 मिनट के लिए हम आपके साथ में कुछ विचार गोष्ठी करेंगे, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। राजा का नाम क्या है जो कि उस स्थान का राजा है और जगन्नाथ जी का भक्त है? क्या नाम? राजा प्रताप रुद्र। राजा प्रताप रुद्र की क्या विशेषता है जिससे चैतन्य की कृपा उसे प्राप्त हुई? तो अलग अलग लोग बताएं ज्यादा ठीक रहेंगे कि एक ही व्यक्ति उत्तर देगा, है ना? हाँ, क्या है? राजा ने क्या किया? नहीं, हाँ, झाड़ू से साफ किया। राजा कोई करेगा कभी ऐसा? राजा ने किया, उससे उसको क्या प्राप्त हुई? श्री चैतन्य जी की कृपा प्राप्त हुई, है ना? तो इस चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें मतलब ये संकोच नहीं करना चाहिए कि छोटा काम मैं क्यों करूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं तो बड़ा बड़ा भक्त हूँ, ये नहीं है ना? तो ये भावना होनी चाहिए। अच्छा, भगवान चैतन्य के नृत्य में उनका जो नृत्य था वो कैसा था? जैसा कभी नहीं हुआ आज तक, किसी का नहीं हुआ, कैसा नृत्य था, कौन बताएगा? हाँ माता जी बोलिए। चक्र की तरह घूम रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं? अग्नि, अग्नि का पुंज। अलाद चक्र देखा है जो मतलब शोभा यात्रा में कई जगह घुमाते हैं ना, तो आग का एक पूरा गोला बन जाता है, घेरा बन जाता है ना जब घुमाते हैं, जबकि लोकाठी होती है एक लठ होता है, डंडा होता है, दोनों किनारों में आग होती है और जब घुमाते हैं तो कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाइए। नहीं देखा? अच्छा, बहुत कम लोगों ने। बचपन में तो हम लोग बहुत देखते थे। एक डंडा होता है, दोनों सिरों में आग लगी है और वो घुमाता है जब तो पूरा चक्र बन जाता है आग का, है ना? और यहाँ पर भगवान चैतन्य है, भगवान चैतन्य जब इतनी घूम रहे इतनी तेजी से है तो पूरा एक आग का जैसे घेरा बन गया हो और फिर ऊपर उछल रहे हैं, ऊपर उछल करके गिर रहे हैं, कैसा नृत्य है ना? ऐसा नृत्य कभी नहीं हुआ और ना हो सकता है, है ना? अच्छा, अब बताइए हाँ, सबसे पहले बताइए उनका रोमांच कैसा है, कौन बताएगा? क्या हुआ? फोड़े, सेमल का पेड़ जैसे कांटे, सेमल का पेड़ भी शायद किसने देखा, सेमल का पेड़। शहर के लोग जो है कुछ नहीं जानते हैं। कहर जो भी हो, है ना, तो पूरा शरीर सेमल के पेड़ की जैसा है, हैं कांटे, हैं ऐसा रोमांच किसी को हुआ? रोमांच नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ रोमांच, ऐसा रोमांच है उनका। और दांत कटकटाते हैं, कैसा है दांतों कटकटाना कैसा है? हैं नहीं, वो भी किसी का नहीं हुआ ऐसा। हाँ, जैसे टूट जाएंगे ऐसे दांत कटकटाए रहे हैं, है ना? अच्छा, और शरीर से पसीना बह रहा है, कैसा है वो? खून भी निकल रहा है पसीना के साथ, ऐसा कभी हुआ पसीना, ऐसा पसीना? और अश्रु, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, कैसे? जल यंत्र पिचकारी ऐसा। और जब घूमते हैं तो और दूर जाता है कि नहीं? फुहारा जो है जितनी तेजी से घूमता है उतनी तेजी से और दूर जाता है पानी, है ना? तो पूरे मतलब पब्लिक को जो है क्या कर दिया उन्होंने, अपने आंसुओं से नहला दिया। कितने सौभाग्यशाली लोग भगवान के आंखों से के अश्रुओं से सब लोग नहा गए, प्रेम के अश्रु, सबके ऊपर प्रेम की वर्षा हुई, प्रेम के अश्रुओं की वर्षा हुई, सब लोग नहा गए, है ना। जगन्नाथ रथ यात्रा होती है वो आषाढ़ के महीने में, वैसे बहुत गर्मी होती है, है ना। सब लोग प्रेम के आंसुओं से नहा गए, है ना, आंसू ऐसे निकले, और रंग परिवर्तन हुआ उनका, उनका रंग गोरा रंग था, कैसा हो गया, गुलाबी हो गया रंग, गोरे से गुलाबी हो गया। और कभी स्तंभित हो जाते हैं, स्तंभित मतलब क्या होता है, खंभे की तरह अकड़, खंभे की तरह अकड़ जाते हैं, है? और चल फिर नहीं सकते, और उनका मुख चंद्रमा के समान है, है? उसमें से अमृत की धाराएं निकल रही हैं, कितनी धाराएं हैं, चार पांच, है ना, चार धाराएं, दो आंखों दो नासा क्षेत्र हैं, और एक फेना, फेना निकल रहा है मुंह से, है ना। और मुंह का फेना किसने पिया, किसने पिया, शुभानंद, शुभानंद बहुत भाग्यशाली, उसने मुंह का फेना पी लिया भगवान के, है ना। तो इस तरह से जो है भगवान ने रथ यात्रा में नृत्य किया। तो ये सब जो है मतलब जानने की वाली बातें हैं। और जब भगवान चैतन्य रथ के पीछे चले जाते हैं तो समय जगन्नाथ जी क्या करते हैं, रथ को रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं, देख नहीं सकते पीछे तो आगे देखते हैं, हैं मोड़ नहीं सकते ना ऐसे ऐसे, इधर तो देख लेते हैं कि आंखें ऐसी हैं, इधर इधर देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, पीछे नहीं देख पाते हैं, तो क्या करते हैं रथ को रोक देते हैं, है ना। और जब आगे सामने आते हैं तो रथ को धीरे धीरे चलाते हैं जगन्नाथ जी, इस तरह से। और फिर एक बार से श्री चैतन्य ने क्या किया, पीछे गए और रथ को सिर लगा करके ठेला, रथ को सिर लगा के ठेला, तो जगन्नाथ जी का रथ चलता है तो क्या आवाज निकलती है, हड़ 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 की आवाज निकलती है रथ में से, रथ चलता है और लोग आवाज निकालते हैं कैसी, हरी हरी, हरी हरी की आवाज निकालते हैं लोग, और रथ निकालता है हड़ हड़ की आवाज निकालता है, इस तरह से। इसमें एक लीला और भी है जो कि मैंने नहीं सुनाई है, इसको मैं बता देता हूँ कि श्री चैतन्य जो है जब नृत्य कर रहे थे तो महाराज प्रताप रुद्र के सामने गिर गए, महाराज प्रताप रुद्र के सामने गिर गए। उस समय नित्यानंद प्रभु ने क्यों नहीं पकड़ा उनको, नित्यानंद प्रभु तो अपने हाथों को फैलाए हुए घूम रहे थे, नित्यानंद प्रभु ने क्यों नहीं पकड़ा उनको, क्योंकि वो घेरा बनाए हुए थे, नित्यानंद प्रभु जो है घेरा बनाए हुए थे, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो तो अब उस एक दूसरे बंधन में है, है ना। और राजा प्रताप रुद्र के पास गिरे श्री चैतन्य, तो राजा प्रताप रुद्र ने उनको आदरपूर्वक उठाया, श्री चैतन्य को उठाया आदरपूर्वक, महाराज प्रताप रुद्र ने बड़े सम्मान से महाप्रभु उठाया, किंतु राजा को देखकर महाप्रभु को बाहरी चेतना आ गई, राजा को देख करके महाप्रभु को बाहरी चेतना गई, हाँ उनकी चेतना थी राधा भाव, राधा भाव में थे श्री चैतन्य, राधा भाव में नृत्य कर रहे हैं कि आज वृंदावन में मेरे कृष्ण आए हैं, जगन्नाथ जी को कृष्ण मान रहे हैं, वृंदावन में मेरे कृष्ण आए हैं, वो नृत्य कर रहे हैं, राधा को देख करके बाहरी चेतना आ गई, बाहरी चेतन क्या कि मैं सन्यासी हूं और ये राजा विषय भोगों में लिप्त है ना। तो राजा को देख करके श्री चैतन्य ने अपने को धिक्कारा कि मुझे धिक्कार है कि मैंने ऐसे व्यक्ति का स्पर्श कर लिया जो संसारी बातों में लगा हुआ है, संसारी काम में लगा हुआ है। कृपा कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन ऊपर से अंदर से कृपा कर रहे हैं राजा के ऊपर, और ऊपर से क्या कर रहे हैं नफरत है, और अपने को धिक्कार रहे हैं श्री चैतन्य कि मुझे धिक्कार है मैंने ऐसे व्यक्ति का स्पर्श कर लिया है जो संसारी कामों में लगा हुआ है। श्री चैतन्य राजा के व्यवहार से प्रसन्न हो चुके थे क्योंकि राजा ने जगन्नाथ के लिए झाड़ू लगाने का काम किया था। श्री चैतन्य राजा को ये अवसर देना चाहते थे, क्या स्पर्श करने का अवसर देना चाहते थे, फिर भी अपने संगियों को शिक्षा देने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ऊपर से रोष प्रकट किया। शिक्षा भी देना चाहते हैं कि सन्यासी को बहुत सावधान रहना चाहिए कि संसारी लोगों में ज़्यादा हिले मिले नहीं है, कि फिर उसकी वो इच्छा हो कि चलो मैं भी ऐसा ही हो बन जाऊँ, उसने सब त्यागा है, सब विषय शोक त्यागे हैं, तो इसलिए वो शिक्षा दे रहे हैं। और राजा प्रताप तो भयभीत हो गए, राजा प्रताप तो भयभीत हो गए जब चैतन्य ऐसा बोले कि मुझे धिक्कार है मैंने संसारी व्यक्ति का स्पर्श कर लिया, तो राजा भयभीत हो गए, उन्होंने तो उठाया था भगवान को, भयभीत हो गए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा आप चिंता मत करो, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि नहीं नहीं चिंता मत करो, चिंता मत करो, आपसे बहुत प्रसन्न है वे, आप के बहाने अपने संगियों को शिक्षा दे रहे हैं कि संसारी लोगों से दूर रहना चाहिए, ये उनकी जो है एक दूसरा उद्देश्य है ऐसा बोलने का। तो फिर कहा कि उपयुक्त अवसर पाकर मैं आपका जो है मिलन कराऊंगा उनसे, एक अवसर आएगा तो मैं आपका मिलन कराऊंगा उनसे। तो जगन्नाथ जी की प्रदक्षिणा करके फिर महाप्रभु रथ के पीछे थे, तब उन्होंने अपने सिर से रथ को धकेला। ठीक है, हाँ जी बोलिए।
मैंने जगन्नाथपुरी देखा हुआ है, मंदिर वही मेन यात्रा निकलती है 10 जुलाई को शायद निकलती है रथ यात्रा, तो मैं मंदिर में गया और मंदिर में बहुत बलभद्र भद्रा और ये जगन्नाथ जी का मूर्ति जो है बड़ी हार्डली आई कुड बी एबल टू सी दो मूर्ति, क्योंकि अंधेरा पड़ा मेन मंदिर में, तो ये क्यों मैं समझ नहीं पाया,
अंधेरा। हाँ मंदिर में जो है कुछ ऐसा नियम बनाया है उन्होंने कि घी का जो दिया है वो जलाते हैं, मतलब ये बिजली का प्रकाश नहीं पैदा करते वहाँ मंदिर के अंदर, जो है वो घी का जो दिया होता है उसी से प्रकाश होता है, उस तरह का नियम बनाया हुआ है। हम लोग तो जो है ये बिजली का जो प्रकाश है वो भगवान की सेवा में लगा लेते हैं, लेकिन अभी मंदिर में उनका जो है पहले की जो विधि है, पहले का जो नियम है कि घी से ही प्रकाश पैदा करेंगे, और घी भी जो है आप सोचिए कितना लगता होगा पूरा, मतलब जितना दर्शन है दिन भर का, तो वो घी से प्रकाश, तो कुछ कारण से कुछ हो गया कि घी कम हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसा कभी हो जाता है। ठीक है, लेकिन युक्त वैराग्य जो रूप गोस्वामी ने हमको दिया है उसमें क्या है कि हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, आप समझे ना। तो अगर जो है भगवान के दर्शन के लिए हम अच्छी लाइट की व्यवस्था करें, जैसे हम भगवान का दर्शन अच्छी प्रकार कर सकें, तो इसको हम जो है ले सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो रूप गोस्वामी ने युक्त वैराग्य दिया, तो पहले इसी तरह की प्रथाएं जो पहले की हैं चल रही थी अभी भी, मतलब चल रही थी, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समय भी जो है इस प्रकार की प्रथा चल रही थी कि साधु है तो वो सिले कपड़े नहीं पहनेंगे, है ना, उन्होंने सिले कपड़े सन्यासी लोगों के लिए सिले कपड़े पहनने का उन्होंने मतलब प्रचलन शुरू कर दिया। क्यों सिले कपड़े क्यों ना पहने सन्यासी, अगर अगर सिलाई में जो सुविधा है सिले कपड़े अगर पहनने की सुविधा है, मिल रही है, क्योंकि मशीन अब आजकल मशीन है, तो सिले कपड़े जो है पहनने में कोई मतलब असुविधा नहीं होती है, बड़ी आसानी से मतलब सिलाई हो जाती है। तो पहले हाथ से सिले जाते थे, तो साधु लोग जो है मतलब सिले कपड़े नहीं पहनते थे, अभी मशीनों से सिलाई होती है तो बड़ी आसानी से सिलाई हो जाती है, तो सन्यासी क्यों नहीं सिले कपड़े पहनेंगे, तो सन्यासी सिले कपड़े है ना। तो उन्होंने एक क्रांति जो है मतलब एक मतलब ये बनाई कि सन्यासी सिले कपड़े पहनेंगे। सन्यासी जो है पहले क्या था, प्रथा ये बनी थी कि भाई पैदल चलेगा सन्यासी और ज़्यादा से ज़्यादा बैलगाड़ी में बैठ के जाएगा और दूसरे वाहन में नहीं, किस गाड़ी में नहीं जाएगा, गाड़ियाँ थी नहीं। जब गाड़ियाँ चली तो पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है कार में बैठ करके वृंदावन गए, तो उन लोगों ने बड़ा विरोध किया कि तुम सन्यासी होकर के कार में बैठ के वृंदावन आए, तुम कार में बैठ के वृंदावन आए हैं। तो उन्होंने कहा मैं तुम लोगों को युक्त वैराग्य सिखाने आया हूँ कि कार में बैठ करके अगर आप अधिक से अधिक दूर तक प्रचार कर सकते हैं तो क्यों ना कार का प्रयोग किया जाए, तो सन्यासी क्यों ना कार का प्रयोग करें। तो समय वो लोग जो है डंडा मारने के लिए आए, उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को डंडा मारने के लिए आए, तो समय उन्होंने पुलिस की शरण ली। ये भी दिखाया कि पुलिस का भी जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, तो पुलिस पुलिस की शरण ली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो रूप गोस्वामी जो युक्त वैराग्य का सिद्धांत दिया, उसमें उस समय बहुत सी चीज़ें नहीं थी, अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं है? तो प्रचार के लिए क्यों ना प्रयोग किया जाए। इसलिए प्रभुपाद जो है हवाई जहाज में बैठ करके भी उन्होंने प्रचार किया और पूरे विश्व के 14 बार जो है परिक्रमा की हवाई जहाज में बैठ के और 108 मंदिर बनाए। तो ये थोड़ी अभी पहले हवाई जहाज था नहीं तो कोई साधु बैठता नहीं था हवाई जहाज में, अब हवाई जहाज बन गए तो साधु हवाई जहाज में ना बैठे, क्यों ना बैठे। जब हवाई जहाज में बैठ करके लोग जो है इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं, तो हम हवाई जहाज में बैठ करके उनको कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है वो क्यों ना करें, हम क्यों पीछे रहें है? वो जो है अपना नरक जाने का जो रास्ता है वो ढूंढ रहे हैं इन सब चीज़ों के द्वारा, तो हम उनकी रक्षा के लिए हैं, उनको बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए हम क्यों ना इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, है ना। अब प्राचीन काल में क्या था, ये किताबें छपती नहीं थी, हाथ से लिखी जाती थी है? तो अब हम क्या वही करेंगे प्रथा की भाई हाथ से ही लिखेंगे किताबें, इस किताब को ये हाथ से लिखने में कितना परिश्रम लगेगा, कितने दिन लगेंगे है? और इतने बड़े छोटे अक्षर भी नहीं हाथ से लिखे जा सकते हैं? तो कितना इतना बड़ा जो है मतलब वो बन जाएगा है? तो समय लूज पेपर होते थे, बाइंडिंग भी नहीं होती थी, तो ये थोड़ी कि अब ऐसे करें। अब छपाई अगर हो रही है तो इन पुस्तकों के द्वारा हम छपाई का लाभ उठा करके और जो है बाइंडिंग का लाभ उठा करके और इन किताबों का जो है वितरण अधिक से अधिक मात्रा में कर सकते हैं और लोगों की रक्षा होगी कि नहीं। तो इसलिए जो है हमारे मंदिरों में जो है अधिक से अधिक जो है लाइट का इस्तेमाल किया जाता है और फोकस वाली लाइट, जिससे कि भगवान का जो और अच्छा दर्शन हो, है ना। तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि भगवान की सेवा में लगाई जा सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ये अनाउंस करना हाँ, आप बोलोगे या आप बोलेंगे इन किताबों के बारे में।
हरे कृष्णा, तो आपके लिए एक बहुत ही अत्यंत शुभ सूचना है। आपको पता है श्री भगवान ने कहा पुस्तक प्रवचन ने लिखी है, किसको पता है उनको, किसी को नहीं पता प्रभुजी को पता। प्रभुजी आप लोगों के पास भगवत दर्शन पत्रिका आती होगी, आती है ना, तो उसमें प्रभुजी का एक लेख होता है भगवत गीता के ऊपर, श्री भगवान ने कहा, पढ़ा है आपने से किसी, ठीक है कोई नहीं। तो ये श्री भगवान ने कहा जो बुक है इसी में से उसमें लेख छपता है भगवत दर्शन पत्रिका में, तो ये सातवां खंड है जो कि भगवत गीता यथारूप के ऊपर विस्तृत व्याख्या है, पर इस पुस्तक की खासियत ये है, हरिभाव कि कोई भी इस पुस्तक को समझ के आसानी से भगवत गीता यथारूप समझ सकता है, और प्रत्येक श्लोक की व्याख्या बहुत ही सुंदर तरीके से और इसमें बहुत ही गहरा ज्ञान है। और इसकी विशेषता यही कि कोई भी व्यक्ति आसानी से समझेगा और बड़े रोचक तरीके से प्रभु जी ने बताया, तो बोरिंग होने का कोई भी मतलब नहीं। और इसको पढ़ने के बाद हमें भगवत गीता यथारूप समझ में आएगी और भी शास्त्र समझ में आएंगे, और बाहर की जो भगवत गीता की टीकाएं हैं उनसे आप आसानी से बच सकते हैं और सत्य आपके सामने जो प्रकट होगा कि भगवत गीता में जो भगवान ने कहा है वो वास्तव में कितना आनंद का विषय है और सबों के लिए बहुत ही आनंद का विषय, इससे आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आप प्रभु जी से भी ले सकते हैं, प्रभु जी के हाथ से। तो हमने इसका प्रिंटिंग सेवा 70 रुपये है, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा पढ़ के। आप खुद ही अगली बार बोलेंगे कि आपने हरे कृष्ण, तो आप में से जो भी आना चाहें तो प्रभु जी से ले सकते हैं पुस्तक।
कितनी प्राइस है इसकी?
70
है।
70
हरे कृष्ण। तो जब हमने भगवत गीता थोड़ी डिटेल में पढ़नी स्टार्ट करी थी, जब मैंने भी भगवत गीता थोड़ी डिटेल में पढ़नी स्टार्ट करी थी तो प्रभु जी की बुक को रेफर किया था, और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप गीता का एक श्लोक पढ़े जैसे फर्स्ट श्लोक सेकंड श्लोक, हमें लगता बहुत ही ना, संजय बोल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या हुआ, बहुत ही सिंपल प्रश्न लगता है सुनने में। विकराज पूछ रहे हैं संजय से कि क्या हुआ,